अध्याय 9 आंतरिक परिवर्तन काल 1853 से 1894। सम्राट की पुनर्स्थापना से चीन के साथ युद्ध तक विदेशी, आर्थिक, शिक्षा संबंधी तथा धार्मिक मामलों में परिवर्तन 1868 से 1894। पृष्ठ संख्या 96। पश्चिमी देशों के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना। पिछले कुछ पृष्ठों में हमने पश्चिमी देशों के साथ संपर्क से शासन के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया। सन 1853 से 1894 के बीच की अवधि की यही प्रमुख विशेषता थी। एक उतनी ही महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्र में विदेश नीति का विकास था। प्रारंभिक वर्षों को छोड़कर तोकुगावा प्रशासन की अन्य देशों के प्रति नीति को संक्षेप में पृथक्करण की नीति कहा जा सकता है। अंततः पैरी के आगमन से जापान के इस एकांतवास का अंत हो गया। इस नई नीति के महत्व से राष्ट्रवासियों को परिचित कराने में कुछ वर्ष लग गए, परंतु जब एक बार इसे स्वीकार कर लिया गया तो नए युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन कर लिए गए। पश्चिमी देशों को टोक्यो में राजनयिक दूतावास स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई तथा अपने मंत्रियों की सलाह से युवक सम्राट ने विदेशी राजनयिकों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया और पश्चिमी देशों और अपनी सरकार के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयत्न किया। विभिन्न संधिबद्ध राष्ट्रों की राजधानियों में जापानी दूतावास स्थापित किए गए तथा जापान ने अपने आप को पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। जापान में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद की तीव्र भावना का उदय। तोकुगावा के शासनकाल में जिस राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना का विकास हो रहा था और पाश्चात्य देशों के साथ संपर्क ने देश में जिस आकस्मिक एवं सशक्त जीवन का संचार किया था, उसका सहज परिणाम था राज्य का केंद्रीयकरण और पुनर्गठन। विदेशों के साथ संबंधों में इस भावना की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से हुई। इनमें से प्रथम प्रयास, जिसे क्षणिक कहा जा सकता है, अनुदार दल वालों द्वारा किया गया। उन्होंने बर्बर विदेशियों से देश को मुक्त करने और फिर से देश को पृथक्करण की नीति स्वीकार करने की दिशा में प्रयत्न किया। सन 1870 तक इस युग का अवसान हो चुका था। द्वितीय प्रवृत्ति का उदय साम्राज्यवाद की भावना के रूप में हुआ। इसके मूल में विस्तृत साम्राज्य के विस्तार की इच्छा थी। यह प्रवृत्ति बहुत तीव्रता से फैली। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा 20वीं शताब्दी में युद्धों में तथा राजनयिक क्षेत्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तीसरी प्रवृत्ति का उदय राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना के कारण हुआ। जापान के लिए अन्य देशों के द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को सहन करना कठिन था, इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ समानता के व्यवहार की मांग की। फलतः मुख्य रूप से संधियों का पुनरीक्षण तथा अपर देशीयता के अधिकार का उन्मूलन करके शुल्क पद्धति को पूर्ववत लागू करने और न्यायिक अधिकार को बनाए रखने का अनुरोध किया गया। फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों पर जापानियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के कारण उग्र असंतोष की लहर फैल गई। साम्राज्यवाद की भावना की प्रथम अभिव्यक्ति मेजी पुनः स्थापना काल के पश्चात हुई, जब जापानियों द्वारा आबाद सभी क्षेत्रों पर या ऐसे क्षेत्रों पर जो जापान के द्वीपों के अंतर्गत थे, सम्राट के शासन की मांग की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि रियुक्यू द्वीप समूह, बोनिन द्वीप समूह, क्यूराइल, काराफुतो और होकाइडो आदि क्षेत्रों पर जापान का न्याय सम्मत अधिकार है। इसके साथ ही कोरिया को भी जापान के एक अधीन राज्य के रूप में मानना चाहिए। होकाइडो निर्विवाद रूप से जापानी क्षेत्र था और तोकुगावा के शासनकाल में इस पर उत्तरी क्षेत्र के एक दाइमियो और शोगुन का नियंत्रण था। यहाँ अधिकांशतः आइनू लोग बसे हुए थे और जापानियों की संख्या बहुत ही कम थी। इस कार्य की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष ब्यूरो संगठित किया तथा इन क्षेत्रों पर उपनिवेश बसाने तथा इन्हें विकसित करने की एक विस्तृत योजना बनाई। यह कार्य इतनी सफलता से संपन्न हुआ कि कुछ ही समय में यह जापान के एक सीमापवर्ती प्रांत के रूप में विकसित हो गया तथा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए एक अच्छा उपनिवेश बन गया। काराफूतो और क्यूराइल में उनकी साम्राज्यवादी नीति को उतनी सफलता न मिली। रूस ने भी इन दोनों क्षेत्रों पर अपने हक का दावा किया और अंततः इस विवाद का निपटारा सन 1875 में एक समझौते के द्वारा हुआ, जिसके अनुसार क्यूराइल पर तो जापान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया, परंतु इसके बदले में उसे काराफूतो के क्षेत्र पर से अपने प्रभुत्व का परित्याग करना पड़ा। यहाँ यह बता देना असंगत न होगा कि रूस के लिए काराफूतो क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल पूर्वी साइबेरिया का अधिकांश समुद्र तट ही नहीं आता था, बल्कि उस क्षेत्र को संचित करने वाली आमूर नामक प्रमुख नदी का मुहाना भी आता था। जापान ने सन 1878 में बिना किसी विरोध के बोनिन द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। रिव्यू द्वीप समूह में उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। जाति एवं भाषा की दृष्टि से यहाँ के अधिवासी जापानियों के अधिक निकट थे। सामंत युग में वे सत्सुमा के अधीन रहे और लगभग 2 शताब्दियों तक उसी के साम्राज्य का एक अंग समझे जाते रहे। उन्होंने चीन में उपायनों के साथ दूत भेज रखे थे और साथ ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अनेक पश्चिमी देशों के साथ संधियां भी निष्पादित की थी। सन 1868 में जापान ने इन द्वीपों पर निश्चित रूप से अपने हक का दावा किया और जब 1871 में फार्मोसा के जंगली लोगों ने उनके कुछ आदिवासी मार डाले तो जापान ने इसका प्रतिशोध लेना चाहा। फार्मोसा चीन का अधीनस्थ प्रदेश था। चूंकि रिव्यू के आदिवासी जापान की प्रजा थे, इसलिए टोक्यो की सरकार ने पिकिंग से क्षतिपूर्ति की मांग की। चीन ने रिव्यू पर जापान के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही फार्मोसा की जंगली जातियों को भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। इसके जवाब में सन 1874 में जापान ने एक सैन्य जत्था भेजा और दक्षिणी फार्मोसा पर कब्जा करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब चीन ने इस कार्रवाई के प्रति विरोध प्रकट किया तो जापान ने इस कार्य में हुई क्षति की मांग की। फलस्वरूप दोनों देशों में लगभग युद्ध की सी स्थिति पैदा हो गई, लेकिन अंतोगत्वा चीन को झुकना पड़ा और उचित हर्जाना देना पड़ा। जापान ने भी अपने सैनिकों को वहां से हटा लिया। इसी बीच जापान ने रिव्यू द्वीपों के राजा को पश्चिमी देशों के साथ की गई संधियों का परित्याग करने तथा जापान का आधिपत्य स्वीकार करने पर सहमत कर लिया। सन 1879 में जापान के इन द्वीपों पर अपना प्रांतीय प्रशासन स्थापित कर लिया और इस प्रकार इन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। चीन ने इस समय भी उसके तथा जापान के बीच इन द्वीपों के प्रस्तावित विभाजन का विरोध किया तथा अपनी असहमति प्रकट की, परंतु जापान चुपचाप अपनी योजना पर दृढ़ रहा और संपूर्ण द्वीप समूह पर अपना आधिपत्य कायम रखने में सफल हुआ। कोरिया के साथ जापान के संबंध। कोरिया में स्थिति इससे भी कहीं अधिक विकट थी। रिव्यू द्वीपों की तरह कोरिया ने भी गत कुछ वर्षों में एक साथ चीन एवं जापान दोनों ही देशों के प्रभुत्व को मान्यता प्रदान की थी, परंतु यह प्रदेश जापान की अपेक्षा चीन के साथ कहीं अधिक निकट रूप से संबद्ध था। चीन जापान की अपेक्षा कोरिया के अधिक समीप और अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था तथा उसकी संस्कृति का प्रमुख स्रोत था। फलतः वहां के लोगों में चीन के प्रति अधिक आदर भाव था। इसके साथ ही अभी कोरिया हिदेयोशी के नृशंस आक्रमण को नहीं भूला था। सन 1868 और 1869 में कोरिया ने अपने पड़ोसी द्वीप जापान के राजदूत का स्वागत करने से भी इनकार कर दिया। इस प्रवृत्ति ने जापान को प्रायद्वीप में फिर से अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्हीं दिनों 1868 रूस ने उसूरी नदी के पूर्ववर्ती क्षेत्र को हस्तगत कर लिया था और कोरिया की उत्तरी सीमा के पास ही व्लाडिवास्तक बंदरगाह स्थापित कर लिया था, जिससे कुछ जापानी कूटनीतिज्ञ रूसी आक्रमण से आशंकित हो उठे थे। यह स्पष्ट था कि रूस एक ऐसे बंदरगाह को प्राप्त कर संतुष्ट होने वाला न था जो शीतकाल में बर्फ के कारण बंद पड़ा रहता हो। व्लाडिवोस्तोक से प्रशांत में खुलने वाले दोनों ही मार्गों पर जापान का नियंत्रण था। इनमें से एक मार्ग होकाइडो तथा जापान के मुख्य द्वीप के बीच की तुगारु जलसंधि स्पष्ट ही जापान की भाग थी। इसके अलावा दूसरा मार्ग कोरिया और क्यूसी के मध्य स्थित चौड़ी जलसंधियों में से होकर था, जिनके बीच तुशीमा और इसो नामक दो द्वीप थे जिन पर जापान का आधिपत्य था। सन 1880 से 90 के बीच रूस ने एक बार तुशीमा पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटेन के हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। इसमें संदेह नहीं कि उसे कोरिया पर आधिपत्य स्थापित करने की उत्कट इच्छा थी। कोरिया एक शक्तिहीन देश था और उस पर एक भ्रष्ट तथा अयोग्य सरकार का शासन था, इसलिए यह किसी बाह्य देश की सहायता के बिना यूरोपीय शक्ति का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकता था। यदि रूस इस प्रायद्वीप पर अधिकार कर लेता तो वह जापान के लिए बहुत खतरनाक पड़ोसी सिद्ध होता। जापान के नेताओं के एक वर्ग ने कोरिया में अपने देश के स्वार्थों की रक्षा करने के लिए आक्रामक नीति अपनाने की मांग की, लेकिन देश के अधिकांश राजमर्मज्ञ तब तक कोई ऐसा विशाल विस्तारवादी कार्यक्रम शुरू करने के पक्ष में न थे जब तक जापान के आंतरिक पुनर्गठन का कार्य लगभग पूर्ण न हो जाए। लेकिन सरकार कोरिया को भूली नहीं थी। सन 1875 में जब जापान के एक जंगी पोत पर कोरिया के एक दुर्ग से गोली चली तो राजा के परामर्शदाताओं ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने का निश्चय किया। अगले ही वर्ष एक सशस्त्र जत्था वहां भेजा गया। उन्होंने वही तरीका अपनाया जो पैरी ने सोगुन के अधिकारियों के साथ अपनाया था और बड़ी चतुराई से डरा धमका कर एक संधि तय कर ली। लेकिन जब कोरिया ने एक स्वतंत्र देश की हैसियत से जापान के साथ संधि समझौता किया तो चीन ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। इस प्रकार अन्य देशों के लिए कोरिया के द्वार खोलने में जापान ने पहल की तथा इसको पश्चिमी आदर्शों के अनुरूप पुनर्गठित किया। इसके बाद पश्चिमी देशों के साथ भी संधियां हुई, वाणिज्य में प्रगति हुई और एक सुधारवादी दल का उदय हुआ। चीन को जापान की ये चालें नहीं भाई। वे जापानियों को द्वीपीय बौने के नाम से पुकारते थे। चीन इस समय भी सुदूर पूर्वी अनुदारवादी विचारधारा का गढ़ था और उसने कोरिया की राजधानी सियोल में प्रतिक्रियावादी दल का समर्थन किया। उसने वहां पर अपना एक रेजिडेंट नियुक्त किया जो अपने देश के अधिकारों का प्रतिनिधि होने के कारण काफी प्रभावशाली था। जैसा कि स्वाभाविक था, जापान ने वहां के सुधारवादी दल का समर्थन किया। इन दोनों दलों में मतभेद पैदा हो गया और सन 1882 में अनुदार दल के समर्थकों ने जापानी दूतावास पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी और दूतावास के सदस्यों को अपने जान बचाने के लिए भागने पर विवश कर दिया। इसके पश्चात इस दुर्घटना में हुए नुकसान के बदले जापान सरकार ने हट जाने की मांग की तथा अपनी सेना द्वारा अपने दूतावास की रक्षा करने का विशेषाधिकार मांगा। ये दोनों ही मांगें पूरी कर दी गई। सन 1884 में कोरिया के अनुदार दल तथा आमूल परिवर्तनवादी दल में एक और मुठभेड़ हुई। इनमें से एक दल ने चीन से तथा दूसरे ने जापान से सहायता की मांग की। दोनों ही देशों ने तत्परता से अपनी अपनी सेनाएं वहां भेज दी और 1885 में एक लिखित आपसी समझौते के आधार पर दोनों देश अपनी सेनाएं वापस बुलाने पर सहमत हो गए। समझौता का ब्यौरा इस प्रकार है। कोरिया में किसी तरह की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर यदि सेना भेजने वाले दोनों देशों अथवा किसी एक देश के लिए अपनी सेनाएं भेजना आवश्यक हो जाए तो इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस स्थिति में एक दूसरे को परस्पर अपनी कार्रवाई की लिखित पूर्व सूचना दें और विवाद का फैसला हो जाने पर अपनी सेनाएं वापस बुला लें। इसके पश्चात कुछ काल तक प्रायद्वीप का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहा, लेकिन सुधारवादी दल के समर्थकों और प्रतिक्रियावादियों में संघर्ष जारी रहा। फलस्वरूप 1894 में चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया।